بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگوں کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ ان سے استفادہ اور فائدہ اٹھانے والے اور نفع اٹھانے والے ہر آدمی اپنے ظرف کے مطابق فائدہ اور نفع حاصل کرتا ہے. تو اس کی مثال اس زمانے کو میں سمجھنے کے لیے آسان ہے کہ جب یو پی ایس لگواتے ہیں یا سولر پینل سولر سسٹم لگوانے جائیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ جو بیک اپ چاہیے کتنے گھنٹے کا چاہیے. تو کہتا ہے کہ جی اتنے گھنٹے, دو چار چھ, اور لوڈ اتنا. تو کہتا ہے صاحب اتنے گھنٹے کے لیے آپ کو یہ والی بیٹری اتنی لگانی ہوگی. تو جتنی زیادہ بیٹری ہوگی بیک اپ اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یہ اس کا اصول اور قاعدہ طریقہ ہے. اسی طریقے سے اہل اللہ سے نفع فائدہ اٹھانے کا, اپنے شیخ کی صحبت سے نفع فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے دل کی بیٹری کی چارجنگ بھی ضروری ہے. اب ہر آدمی کی بیٹری الگ الگ ہوتی ہے. پھر وہ لوگ ایک نصیحت اور کیا کرتے ہیں کہ جناب آپ اپنے لوڈ کو ذرا کم کریں. مثلا پنکھا ضرورت نہیں ہے نہ چلائیں. جہاں بجلی جس وقت بند کرنی چاہیے اس وقت بند کریں, ضرورت کی استعمال کریں, ورنہ آپ کا جو بیک اپ ہے وہ کمزور ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت سے دل کی بیٹریاں وہ چارج ہو جاتی ہیں. پھر نیک اعمال کی اس کا نتیجہ یہ کہ نیک اعمال کا وولٹیج پورا ہوتا ہے, پورا ملتا ہے. جیسے وولٹ پورا ہو تو پنکھا اپنی رفتار سے چلتا ہے. اور اگر وولٹیج کم ہو تو پنکھے کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے. اور یہی تمام اشیاء پر جو بجلی سے استعمال ہوتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے جب انسان صحبت شیخ میں جاتا ہے تو اس کے ایمان کی بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے. اب اگر وہ نیک اعمال کرے, سنت پر عمل کرے, یہ بہت اہم چیز ہے. کیونکہ آدمی دین کا کام کرتا ہے, دین کی خاطر آگے بڑھتا ہے, لیکن اس کا عمل اگر خلاف سنت ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی باوجود دین پر چلنے کے, دین کا کام کرنے کے مقبول نہ بنے گا ساری زندگی. اگرچہ کتنے ہی لمبی لمبی عبادات ہو, کتنے ہی اس کے دینی طور پر معاملات ہو, لیکن اگر سنت نہیں ہے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تو اس کو صاف یوں فرماتے تھے, گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن, گر ہوا پہ اڑتا ہے وہ رات دن, ترک سنت جو کرے شیطان گن. اس پر ایک واقعہ میرے شیخ و مرشد حضرت والا نمبر اللہ مقدم فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, ان کو معلوم ہوا کہ فلاں علاقے میں کوئی بزرگ تشریف لائے ہوئے, ان کی شرعی مجبوری تھی. جب پہنچے تو وہ بزرگ تشریف لے جا چکے تھے. जब तशरीफ लाए तो जिस मकाम पर ठहरे हुए थे तो बताया कि अभी वो तो तशरीफ ले गए। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मैं ये मुलाकात ना कर सका। फिर फरमाने के अच्छा यूं करो भाई, वो उस जगह ही की जियारत करा दो जहां उन्होंने नमाज अदा फरमाई है। कच्ची जमीन, कच्ची मिट्टी का जमाना था, इसलिए आप फिका की पुरानी किताबें पढ़ें तो उसमें लिखा होता है कि सजदे की जगह पे कंकरों को दुरुस्त न करें, ये भी मकरूह पुरानी किताबों में लिखा रहता है। अब तो माशाल्लाह कालीन जनाब और क्या क्या उम्दा सामदा चीजें हैं। मैं इस जमाने वाला पढ़ेगा कि कंकर का कहां से जिक्र आ गया, इसलिए मना किया कि पुरानी किताबें ना पढ़े। मौजूदा वो बुजुर्गान दीन उलमाए किराम जो इत्तेबा शरीयत और सुन्नत का मामला कर रहे हैं उनकी बात माने, या पुराने हालात से वाकिफ हो, समझे कि कैसा चल रहा था मामला। बहरहाल वो जो सजदे की जगह थी फरमाया वहां ज़ियारत का, तो जहां नमाज पढ़ी है उस जगह की ज़ियारत कर लूंगा, अल्लाह ताला मेरे लिए इसी को नजात का जरिया फरमाते हैं। जब उस जगह की ज़ियारत की तो देखा कि सजदे के जो निशान थे बने हुए, सजदे के का सुन्नत यह है कि हाथ भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, उंगलियां इस तरह मिली हुई हो सजदे में, बिल्कुल ऐसे मिली हुई और बंद, और वो भी किबले की तरफ बिल्कुल सीधी किबले ऐसे टेढ़ी ना। तो देखा जो सजदे का निशान था वो टेढ़ा था और पांव की उंगलियां भी मोड़ कर उसका रुख भी किबले की तरफ सजदे में, ऐसा ऐसे उंगलियां मोड़ कर उसका रुख भी किबले की तरफ हो, ये मर्दों के लिए सुनना था। और औरतों का सजदे का तरीका ये नहीं है, उसमें तमीज है और फर्क है। तो देखा कि उंगलियां टेढ़ी, आह खींची और फरमाया आह, जिसका अमल सुन्नत के खिलाफ वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। अब आप बताइए एक सुन्नत पर फरमा रहे ये बात, इसलिए सुन्नत का बहुत असर होता है। अब वो चाहे सुन्नत इबादात से मुताल्लिक हो, मुआमला से मुताल्लिक हो, मुआशरत से मुताल्लिक हो, अखलाकियात से मुताल्लिक हो, अगर किसी सुन्नत में कमी है तो उसका नतीजा उस ताल्लुक और नस्बत जिसको हम हासिल करना चाहते हैं उसका असर उस पर पड़ेगा, और हम लोग बावजूद मेहनत के उस चीज से महरूम रहेंगे। अलबत्ता यहां पर एक चीज का ख्याल जरूरी है कि अब एक आदमी ने मिसाल है कि सुन्नत सीखी कि जी जब सजदे में जाए तो कमर बिल्कुल सीधी उतरे, बिल्कुल सीधी, और जब सजदे से उठे तो उठते वक्त भी पहले पेशानी, फिर नाक, फिर घुटने और फिर कमर सीधी करके ऐसे उठे, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए 90 डिग्री जाविया कायमा के साथ। ये सुन्नत तरीका है। कलम याद रख करके दिखाओ, नहीं कर लो नीचे घुटने तक उतर जाओ, ये सीधी, और खड़े हो गए तो भी ऐसे कमर 90 डिग्री ऐसे होनी चाहिए। अब इसने सुन्नत सीख ली, अब उस सारों को देख रहे, अब यही होता है ना, सबको तो आता है। अपनी तरफ फिक्र कम होती है, दूसरों की ज्यादा शुरू हो जाती है। अब जनाब मान लो किसी के पास गया, वो बुजुर्ग मशहूर है, अब उनके पास गया तो देखा कि वो कमर टेढ़ी करके उतर रहे, उसने कहा देखो ये है खिलाफ सुन्नत। तो इसमें याद रखिएगा कि अब दो हालतें हो सकती है, या तो वो बुजुर्ग मशहूर जो हैं, मशहूर बुजुर्ग जवान है या बूढ़े हो। अगर जवान है तो दो हालतें होंगी, या तो सेहतमंद होंगे या बीमार हो सकते हैं। तो बीमार आदमी के लिए गुंजाइश है कि वो कमर को सीधी के बजाय थोड़ा सा ज़रा खम करके उतर सकता है। इसी तरह किसी बेचारे की कमर में तकलीफ है, उसके लिए भी गुंजाइश है। बूढ़ा हो गया, उसके लिए भी गुंजाइश है। तो पता ये चला हालत उज्र में किसी आदमी की उज्र की हालत है, तो उसकी उज्र की हालत में उसके लिए ये गुंजाइश है कि वो कभी कभी बताए उसका अमल सुन्नत के खिलाफ मालूम होगा। इसे बुजुर्गों ने फरमाया कि एक मजलिस से इस बात का अंदाजा मत लगाओ कि आया ये शख्स मुत्तबे सुन्नत है कि नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त ऐसी हालत हो कि ये सफर से आया थका हुआ है, तो उस वक्त बदगुमानी करने के बजाय फरमाए कि उसके पास कुछ दिन आना जाना कर लो, देख लो, तब पता चल जाएगा कि आया वो गुंजाइश पर अमल कर रहा है या उसकी आदत सुन्नत के खिलाफ है। अगर किसी की आदत खिलाफ सुन्नत है तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी की आदत सुन्नत के खिलाफ है तब तो कोई गुंजाइश नहीं है, और अगर माजूर है तो माजूर से बदगुमानी करने का कोई फायदा नहीं है। तो शेख की सोबत से जब वो बैटरी चार्ज होती है ईमान की, तो अमल सालेह सुन्नत पर अमल और जमात की नमाजों की पाबंदी, मस्जिद की सफ़े अव्वल मसबूक न बनना यानी रकात न छूटे, और इसी तरह से अपने मिलने वालों से चाहे तिजारती तौर पर हो चाहे पड़ोसी तौर पर हो उनके साथ मेल और मुलाकात में अखलाकी बुलंदी का कायम रहना। यानी कि किसी से मामला हुआ बस हफ्ते से उखड़ गए, और अपने माँ बाप बीवी के साथ इस चीज का एहतमाम के अपने अखलाक को काबू में करना, कंट्रोल करना। जब बैटरी चार्ज होती है तो नतीजा ये होता है सारे काम ठीक होते हैं, कि जी जमात भी, जमात से नमाज का एहतमाम भी हो रहा है, सुन्नत की तरफ तवज्जो भी हो रही है, और जनाब बीवी के साथ भी मामला एंड बर्ताव जरा ठीक चल रहा है। क्या मतलब बर्ताव कैसे ठीक है? बीवी ने बर्तन उठा के मारा, उसने हंस के टाल दिया, और जब बैटरी लो हो जाती है उसने बर्तन मारा, उसने भी आगे से पलट के मार दिया। किसी ने कुछ कहा तो मौका था कि तहम्मुल करके अपनी जबान को बंद कर ले और जवाब ना दे। बाद लोगों का एक मिजाज और भी होता है, जवाब नहीं देते, जवाब कोई होता है लेकिन नहीं देते, और कह भी देते हैं मेरे पास भी जवाब है लेकिन अभी छोड़ रहा हूं, क्योंकि अभी बैटरी चार्ज है। ये भी ठीक नहीं है, ये भी कमजोरी की अलामत है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक शख्स था, उसकी किसी से लड़ाई, उसने कहा इतनी सुनाऊंगा कि याद करेगा। तो दूसरे ने कहा तू एक सुनाएगा, मैं तुझे 10 सुनाऊंगा। तो मारूमी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, फरमाया तुम मुझे 10 के बजाय 100 भी सुना दो और मैं तुम्हें एक भी नहीं सुनाऊंगा। बस उस बहुत भरे दिल से, दर्द भरे दिल से फरमाया कि वो शख्स की आंखों से आंसू जारी हो गए, कदमों में गिरकर रोने लगा कि अखलाक तो इसको कहते हैं। तो जब बैटरी चार्ज होती है तो काम भी ठीक लग चलता है, और जब बैटरी में कमी हुई फिर नतीजे क्या हुआ कि फिर 10 सुनाऊंगा तुझे, क्या याद करेगा, बल्कि फोन बंद करने के बाद दोबारा फोन करेगा, ठीक है, और सुन। ठीक है, क्यों? अभी उसको चूंकि कल्ब में नूर नहीं है ना, तो वो नूर ना होने की वजह से वो भड़कता है बार बार, वो बार बार भड़कता है। जैसे आग होती है ना, ठंडी होती है तो एकदम फिर भड़क जाती है, और बाजे लोग जल्दी पर तेल का काम भी करते हैं। तुझे बोला, अच्छा हाँ वाकई, लेकिन जब नूर होता है तो वो नूर उस नार को बुझा देता है, और ये वही चीज है जिसको बुखारी शरीफ में सरवर आलम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जहन्नम से फरमाएंगे, कुरान पाक में है यौमा नकूलु लिजहन्नम हल इंतलाती, कि हमारा इरशाद होगा जहन्नम से, क्या तेरा पेट भर गया, कई हल मिन मज़ीद, और कुछ भी है? तो अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की हदीस है, ये कदम मुबारक वयज़ऊ कदमहु, अपना कदम मुबारक रखेंगे। क्या मतलब? अल मुराद बिल कदम अत्तजल्लियुल खास, कदम से मुराद अल्लाह ताला की खास तजल्ली है। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, नार का इलाज, आग का इलाज नूर से किया, इसलिए फरमाया कि जब शहवत के तकाजे, गंदे अखलाक के तकाजे, ये आग है आग, इसका इलाज किससे होगा? नूर से। इसका इलाज नूर से होगा। और हजरत वाला एक नुक्ता फरमाते देखो, नार में अलिफ है, नार सीधा, और नूर में वाव है। फरमाया नार में अकड़ होती है और नूर गोल होता है, उसमें तवाज़ो होता है, इसलिए फरमाया जो नूरानी आमाल करता है उसके अंदर आजिज़ी आती है, ये उसकी खासियत है, तवाज़ो पैदा होता है। और जो नारी आमल करता है गुनाह, तो उसके अंदर अकड़ पैदा होती है। इसी से इसलिए इबादात से अगर नूर नहीं पैदा होगा, ये इबादात से उसने कोई और मकसद रखा तो फिर नूर नहीं पैदा होगा, तो इबादत करने के बाद भी इसके अंदर अकड़ आएगी कि मैंने ये काम किया। तो ये है वो बैटरी की फायदा। अब बैटरी कैसे चार्ज करें? तो उसके लिए सोलर पैनल लगाएं। देखिए, सूरज की शुआ में अल्लाह ताला ने ऐसा रखा कि बिजली चल जाती है। फरमाते तो यही तो चीज है कि अल्लाह ताला ने अपने औलिया की नजरों में ये असर रखा। सूरज की शुआ से बिजली मिलती है, इन अल्लाह वालों की शुआ बसरिया से तजल्ली मिलती है, इससे वो कल्ब की बैटरी चार्ज होती है और दिल की दुनिया बदल जाती है, और उसके अंदर आला जर्फी पैदा होती है। लेकिन फरमाते थे एक शर्त और भी है कि बर्तन सीधा, बर्तन सीधा हो, टेढ़ा ना हो। तो इसकी मिसाल में एक आदमी ने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ 50 रुपए का दही ले गया, और वो प्याला दिया जिसके नीचे पेंदा भी होता है, उसके वो भी छोटा सा प्याला होता है। अब उसने क्या किया कि दही वाले के पास गया कि भाई 50 रुपए का दही दे दो। उसने दही तोलना शुरू किया, बोला जनाब ये तो थोड़ा सा कम पड़ रहा है, और बाकी कादू बर्तन तो आपका जर्फ तो भर गया। अच्छा, उसने प्याला था ऐसे सीधा, उसने कहा ये लो बाकी इधर डाल दो। अच्छे जनाब उसने इधर डाल दिया उसने क्या। अब वो बर्तन लेके इसी तरीके से उल्टा बर्तन करके मालिक के पास गया। मालिक ने कहा 50 रुपए का दही मंगवाया था इतना सा लाया, नहीं और भी लाया, उसका बाकी क्या है, क्या ये तू जो छोड़ा था वो भी गया। तो इसलिए फरमाते थे कि बर्तन दिल का बर्तन सीधा हो, बदगुमानी बद एतकादी ये ना, क्योंकि बदगुमानी एतराज बद एतकादी लेकर जाएगा। एक तो होती बे एतकादी, ये इतनी बुरी नहीं है जितनी बद एतकादी बुरी है। एक होती बे एतमादी, वो इतनी बुरी नहीं है जितनी बद एतमादी बुरी है। एक है बेअदबी, वो इतना बुरा नहीं है जितना बद अदबी बुरी है। बे और बद का फर्क समझ में आ रहा ना, बेअदबी तो यह है कि अदब नहीं है और बद अदबी तो यह है कि बुरा अदब कर रहा है, बुरा मामला कर रहा है, तो ये तो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे ही फरमाया कि अगर बर्तन उल्टा होगा तो नतीजे क्या निकलेगा, कभी बर्तन यूं कर रहा है कभी वो कर रहा है, उसको नतीजा फिर वही बात, फैज नहीं मिलेगा, फैज नहीं मिलेगा। कुर्ता टोपी ये तो सब हो जाएंगे लेकिन आगे बात नहीं बढ़ेगी, आगे बात नहीं बढ़ेगी। जी जाहिर में सोलर पैनल भी लगा होगा, इन्वर्टर भी होगा, बैटरियां भी होंगी, लेकिन बिजली नहीं आ रही, तो भी क्या बात है जी। पता चला अंदर वायरिंग ठीक नहीं है तो नतीजे क्या निकलेगा, बैटरी चार्ज भी हो रही है, सब हो रहा है, लेकिन ये सुन्नत से रास्ता नहीं लगा रहा, तकरीर सुनता है इधर से सुन के उधर ही, या उल्टा मामला रखा हुआ है, गलत वायरिंग कर दी है, उससे तो अलग नुकसान होगा। तो जैसे कभी वोल्टेज ज्यादा आ जाए 220 से ज्यादा, तो नतीजा है कि पंखे बत्तियां चीजें उड़ा देता है, वायरिंग जल जाती है। फिर उसी वायरिंग पर अगर अगर ये दोबारा पंखा भी लगा ले फिर भी जलता रहता है, फिर इससे फिर वायरिंग दुरुस्त करनी पड़ती है जनाब। इसलिए कोई ऐसा अमल हो तो फिर उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हजरत वाला रहमतुल्लाह फरमाते हैं एक आदमी ने दरख्त लगाया, सर्दी का जमाना आया, ठंड लगी, उसने उसी लकड़ियां इकट्ठी की, उसी दरख्त की जड़ों में बैठकर आग जलाई, हमारा जल जगे, इसकी जो जड़ें जल गई। अब मुंतजर है कि फल है, फल ही नहीं आ रहा, बगैर दरख्त हरा भरा भी है, क्योंकि जमाने बाद पता चलता है कि जड़े जल गई, मजा है हरा भरा भी होता है कि सब कुछ भी नहीं, या हल्का फुल्का हरा भरा रहता है लेकिन फल पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। बाजी दरख्त है बिल्कुल हरे भरे नजर आते हैं लेकिन फल पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। यही हाल इसका होता है कि जाहिर तो नजर आएगा, टोपी दाढ़ी शलवार टखनों से ऊपर ये नमाज भी पढ़ रहा होगा, लेकिन अंदर इसके कुछ नहीं, उस नमाज में भी कुछ नहीं होगा। इसलिए फरमाया इसका एहतमाम, तौबा कसरते तौबा से वो वायरिंग बदलती है, और अगर माली मामलात है तो उसको पूरा कर ले, किसी को सताए उसे माफी मांग ले, विरासत देनी है विरासत दे दे, कर्जा वापस करना है कर्जा वापस कर दे, नमाज बाकी है नमाज पढ़ ले, रोजा बाकी है रोजा रख लो, यहां पर ये करना। यानी किसी को अगर किसी की इज्जत और आबरू को नुकसान पहुंचाए उससे माफी मांगे, माली नुकसान पहुंचाए माली उसको नुकसान का इजाला करे पूरा करे। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक बुजुर्ग थे, किसी ने उनसे कहा कि हजरत हमारे यहाँ मोहल्ले में अच्छी फला जगह से जब हजरत आपने देखा होगा मैं वहां गुजरता हूं तो पूरा हर तरफ मुझे अंधेरे ही अंधेरे नजर आते हैं सिवाय एक घर के, वो ऐसा लगता है कि दूर में डूबा हुआ। हजरत इसका क्या राज है? तो बुजुर्ग ने गर्दन झुकाई, फिर गर्दन उठाकर फरमाया कि बेटा ये लोग वो हैं जो जनरेटर रखने की सलाहियत, जिनके पास जनरेटर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का अहतमाम, यानी गोया कि हम अपनी मेहनत को जाया न करें, बैटरियां बचा लें। अब तो बालों में सफेदी शुरू हो गई, अब तो बालों में सफेदी भी शुरू हो गई। बचपना कब तक चलेगा? अब तो, अब कल एक साथ हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह, हमारे सितालू, हमारे हजरत वाला हजरत वाला शाह की मदर साहब दारुल खातिम सितालू, सुबह फजर की नमाज हजरत उनके बच्चे यहीं देते हैं, और बहुत खास तालुक वाले लोग, वो शिकारपुर से आए हुए थे, सुबह फजर की नमाज हजरत के साथ पढ़ी। माशाल्लाह पे हजरत का जिक्र में बैठे, फिर हजरत का दरस हदीस होता है, उस दरस हदीस में बैठे, मुलाकात करके सब गए, और फिर रिश्तेदार से कुछ मिलना है। मगरिब के बाद में पहुंचा, पता चला जी उनके जनाजा, अचानक तबीयत खराब हुई, अब शिकारपुर जाना था, अब जनाब वक्त आया, अब जान सुपुर्द कर दो, और रात की मजलिस के बाद उनका जनाजा हुआ। ऐसे हजरत फरमाया इमरजेंसी भी जा रहे, पता ही बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद, आना जाना कुछ, लेकिन क्या वक्त आ गया, तो हम लोगों को कौन सा वक्त मालूम। आकर फजा बाहोश को बेहोश कर गई, हंगामा हयात को खामोश, अल्लाह याद, ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि किस वक्त क्या। इसलिए तैयारी, मुआमला दुरुस्त करें, अपने आमाल सुन्नत पे ढालने की करें, अखलाकी तरक्की की फिक्र करें, शेख जो बता रहा है उस पर जान समझ करें। शेख को ये ना कहें अगर आप होते तो आपको पता चलता है, मेरी जगह आप होते तो आपको पता चलता है। ऐसा न जबान से कहें न अपने हाल से कहें, गोया के शेख को पता नहीं क्या होता। अल्लाह वालों को अपने तराजू में न तोले, एक जर्रे ने पहाड़ से कहा कि मैं तुझे अपने तराजू में तोलना चाहता हूं, तो पहाड़ ने हंसकर कहा कि जब तू मुझको तोलने जाएगा न तू रहेगा न तेरी तराजू रहेगी। इन अल्लाह वालों को अपने जर्फ पे न तोले, अपने तराजू में न तोले, कि ये होते तो इनको पता चलता है हमारे क्या हालात है, अपने तराजू में आते। अल्लाह ताला हम लोग को फहम अता फरमाए, हकीम उम्मत की दुआ, अकुल सलीम, कल्ब सलीम, फहम सलीम अता फरमाए, या अल्लाह अकुल सलीम, कल्ब सलीम और फहम सलीम अता फरमाए, और अदब अता फरमाए, और अपने कर्म से हमारे दीनी नुकसानों को पूरा फरमा दे। और हमारे जो लॉसेस है, खुसूसन वेस्टेज के लॉसेस, उसको दूर फरमा दे। तो काम करते उसमें वेस्टेज आती है ना, ऐसा ना, इसमें परफेक्शन मुमकिन है, 0% वेस्टेज पे आ जाना ऐसे मुमकिन है। और अगर कोई वेस्ट है वो भी कारामत होता है, इसलिए बातों की वेस्टेज भी बिकती है। तो मोमिन की अगर कभी वेस्टेज हुई गुना दरबिनाय बशरियत, तौबा करके उसको भी कारामत बना ले। तो यहां तो नुकसान है ही नहीं, घाटा है नहीं, लेकिन फिक्र करे, फिक्र पैदा हो जाए। फिक्र सबसे बड़ी जो कमी होती है, जो शेख बरसा बरस यानी एक मुद्दत तक जो सारी मेहनत करता है वो इसी पर करता है कि जालिम फिक्र पैदा होता है, क्योंकि काम तो मुरीद ने करना है। जब तक फिक्र पैदा नहीं होगी वो कहे तवज्जो डाल दें, फैज दे दें, बरकत दे दें, वो तो दे रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि पकड़ के एक एक चीज करेगा, बरकत अल्लाह ताला, और बरकत इसी का नाम है कि तवज्जो और फिक्र पैदा हो जाता है। और सोबत की बरकत क्या होती है, अल्लाह ताला की तरफ से उसके दिल में बात आती रहती है कि देखो यार ये मैं गलत कर रहा हूँ। अब मुरीद को हिम्मत की जरूरत है कि उस गलती की तलाफी करें, इसको कहते हैं बरकत। ये थोड़ी कि एहसास ही ना हो, जिस जालिम को एहसास नहीं हो अगर गलत काम करके ये खतरनाक बात है, कमी है इसके अंदर। एहसास हो, अब शेख की बरकत यह है अपनी इज्जत क्या है, माफी मांगूंगा, अल्लाह ताला ऐसा हम बना रहे हैं और 100% तक़वा वाली हयात नसीब फरमाना। वाखर अलहम्दुलिल्लाह तो अल्लाह शरीफ तीन होता हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैहि की साल के लिए Yeah.